17 फरवरी सन 1967 की रात की क्लास।
दिस इज द नाइट क्लास डेटेड 17 फरवरी 1967।
अनुभव तो सब बताते हैं अज्ञान काल और ज्ञान काल की चलन में फर्क हो जाता है।
एवरीवन नरेट्स देयर एक्सपीरियंस दैट अ डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस एंड द पीरियड ऑफ नॉलेज।
ज्ञान का इतना प्रभाव तो समझ में आता है।
एटलीस्ट दिस मच इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज इज सर्टेनली एक्सपीरियंस्ड।
कोई की तकदीर ऐसी होती है जो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते।
सम हैव सच अ डेस्टिनी दैट दे कांट असिमिलेट डिवाइन वर्च्यूज।
तकदीर कहाँ से आती है?
हाउ इज अवर डेस्टिनी मेड?
63 जन्मों में जो जो कर्म किए हैं,
वॉट एवर एक्शंस वी हैव परफॉर्म्ड इन द 63 बर्थ्स,
अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं,
वेदर वी हैव परफॉर्म्ड गुड डीड्स और बैड डीड्स,
उन कर्मों से ही तकदीर बन करके आती है।
द डेस्टिनी इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज वेरी डीड्स।
अच्छा संग किया है तो अच्छी तकदीर।
इफ वी हैव बीन इन गुड कंपनी वी हैव अ गुड डेस्टिनी।
बुरे कर्म किए हैं तो बुरी तकदीर।
इफ वी हैव परफॉर्म्ड बैड एक्शंस वी हैव अ बैड डेस्टिनी।
लेकिन पिछले 63 जन्मों में भी अच्छे और बुरे कर्म का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
बट वेयर इज द फाउंडेशन ऑफ द गुड एंड बैड एक्शंस परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस 63 बर्थ ऑल्सो लेड?
अच्छे संग और कुसंग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
वेयर इज द फाउंडेशन ऑफ हैविंग अ गुड कंपनी एंड अ बैड कंपनी लेड?
वो यही संगम युग है।
इट इज इन दिस वेरी कॉन्फ्लुएंस एज,
जबकि भगवान डायरेक्टर बन करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है।
व्हेन गॉड कम्स एज द डायरेक्टर ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड
और जन्म जन्मांतर की शूटिंग कराता है।
एंड इनेबल्स अस टू डू द शूटिंग ऑफ मेनी बर्थ्स।
हम एक्टर्स जो आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, जन्म जन्मांतर अनेक चोले धारण करते चले आए हैं।
वी एक्टर्स हु आर एक्टर लाइक सोल्स हैव बीन टेकिंग मेनी बॉडीज बर्थ आफ्टर बर्थ।
जो भी चोले धारण किए,
विच एवर बॉडी वी टुक,
उनमें दो प्रकार के चोले,
दे आर ऑफ टू टाइप्स।
सृष्टि के आदि काल से लेकर के मध्य काल तक जिन्होंने देवताई चोले धारण किए,
दोज हु टुक डिवाइन बॉडीज इन द बर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड टिल द मिडल ऑफ द साइकिल,
वो संगम युग में सुख की सृष्टि जरूर बनाते हैं।
सर्टेनली क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस फॉर देमसेल्व्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज,
क्योंकि भगवान ही आकर के संगम युग में मनुष्य को देवता बनाते हैं।
इट इज बिकॉज गॉड हिमसेल्फ कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज एंड मेक्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू डीटीज।
मनुष्य से देवता सब नहीं बनते,
नॉट एवरी वन बिकम्स अ डीटी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग।
ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई सब नहीं पढ़ते।
नॉट एवरी वन स्टडीज दिस नॉलेज ऑफ बिकमिंग नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन।
भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं।
गॉड द फादर कम्स एंड टीचर्स दिस नॉलेज।
वो सब पढ़ाई पढ़ाने वाले को संसार जगत गुरु कहता है, सदगुरु कहता है।
द टीचर हु टीचर्स दैट नॉलेज इज कॉल्ड द जगत गुरु, मीनिंग द गुरु ऑफ द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड। इट कॉल्स हिम सदगुरु।
कहते हैं गुरु अनेक हैं और सदगुरु एक है।
इट इज सेड गुरुज आर न्यूमरस एंड देयर इज वन सदगुरु।
जो अनेक गुरु है वो सदगुरु के मुकाबले सब झूठे साबित होते हैं।
ऑल द न्यूमरस गुरुज आर प्रूव्ड टू बी फॉल्स इन कंपैरिजन टू द सदगुरु।
सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त।
द सिक्स ऑल्सो से एक सदगुरु अकाल मूर्त, मीनिंग द वन सदगुरु कैन नॉट बी डिवोर्ड बाय डेथ एंड इज इन द कॉर्पोरियल फॉर्म।
सत मन सच्चा।
सत मीन्स ट्रू।
सच्चा सदगुरु एक है।
द ट्रू सदगुरु इज द वन
जो इस दुनिया में आकर के सबकी सदगति करता है।
हु कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड ब्रिंग्स अबाउट द सदगति, मीनिंग ट्रू लिबरेशन ऑफ ऑल।
ये बात दूसरी है कि कोई तो इस भगवान की पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त कर लेते हैं।
इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट सम पे अटेंशन टू दीज टीचिंग्स ऑफ गॉड एंड अटेन सदगति फॉर मेनी बर्थ्स।
राम कृष्ण की दुनिया में पहुंच जाते हैं।
दे रीच द वर्ल्ड ऑफ राम एंड कृष्ण
और राम कृष्ण के संगी साथी बनकर के रहते हैं।
एंड स्टे एज देयर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस।
कोई अटेंशन नहीं देते हैं।
सम डोंट पे अटेंशन टू द टीचिंग्स।
नहीं अटेंशन देते हैं।
इफ दे डोंट पे अटेंशन
तो राम कृष्ण जैसे जो हीरो हीरोइन पाटधारी आत्माएं हैं उनके संग के रंग से दूर रह जाते हैं।
दे रिमेन फार फ्रॉम द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द एक्टर सोल्स लाइक राम एंड कृष्ण हु आर द हीरो एंड हीरोइन रिस्पेक्टिवली।
और देहधारी धर्मगुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं।
एंड आर इंटेंगल्ड इन द ट्रैप ऑफ द बॉडीली रिलीजियस गुरुज।
वो गुरु हैं अनेक।
देर आर मेनी ऑफ दोज गुरुज।
2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात को साबित करती आई है।
द हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स हैज बीन प्रूविंग दिस फैक्ट
कि मनुष्य गुरुओं ने सृष्टि को नीचे ढकेला है।
दैट द ह्यूमन गुरुज हैव नॉक्ड द क्रिएशन डाउन।
पाताली गर्त में गई है मनुष्य सृष्टि।
द ह्यूमन क्रिएशन हैज रीच्ड द कैज्म ऑफ द नेदर वर्ल्ड।
ऐसे नहीं कि ऊंचे ऊंचे महल माणिया अटारियां हवाई जहाज और 100-200 वर्ष के अंदर ये माया का चमत्कार साइंस का चमत्कार देखने में आता है।
इट इज नॉट दैट इफ द मिरेकल्स ऑफ माया एंड द मिरेकल्स ऑफ साइंस आर विजिबल इन द लास्ट 100 to 200 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ हाई बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस एरोप्लेन्स।
तो भाव स्वभाव संस्कार कोई देवता ही बन गए हैं।
देन द नेचर एंड संस्कार ऑफ द पीपल हैव बिकम डिवाइन।
नहीं
नो
कोई देवता नहीं बन गया।
नो वन हैज बिकम अ डीटी।
सब मन से वचन से कर्म से संबंध से संपर्क से एक दूसरे को दुख देते आए हैं।
ऑल हैव बीन गिविंग सोरो टू ईच अदर थ्रू द माइंड वर्ड्स एक्शंस रिलेशनशिप्स एंड कॉन्टेक्ट्स।
मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई का ये प्रभाव हुआ है।
दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द ह्यूमन गुरुज।
दुनिया में स्नेह और सहयोग की भावना घटती गई है।
द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड कोऑपरेशन हैज कंटिन्यूड टू डिक्रीज इन द वर्ल्ड।
ये द्वैतवादी युग द्वापर से ऐसा हुआ।
दिस हैपेंड फ्रॉम द ड्यूअलिस्टिक एज द कॉपर एज।
सतयुग त्रेता अद्वैतवादी युग था।
द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस वर नॉन ड्यूअलिस्टिक एजेस।
अद्वैत का मतलब है वहाँ दूसरा राजा नहीं होता था।
नॉन ड्यूअलिज्म मीन्स दैट देयर वाजंट अ सेकंड किंग देयर।
एक राजा होता था एक धर्म होता था एक मत होती थी।
देर वॉज वन किंग देर वॉज वन रिलीजन एंड देर वॉज वन सिस्टम ऑफ ओपिनियंस।
एक कुल होता था।
देर वॉज वन क्लैन।
एक वंश होता था।
देर वॉज वन डायनेस्टी।
एक भाषा होती थी.
देर वॉज वन लैंग्वेज.
इसलिए आपस में वैमनस्य और लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं था.
दिस इज वाई देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ एनिमिटी फाइट्स और क्वारल्स अमंगस्ट ईच अदर एट ऑल.
क्योंकि उन्होंने उन सत्युग त्रेता के देवताओं ने एक से पढ़ाई पढ़ी.
इट इज बिकॉज दे दैट इज दोज डीटीज ऑफ द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस स्टडीड द नॉलेज फ्रॉम द वन.
एक ही मत पर चले.
दे फॉलोड द डायरेक्शंस ऑफ द वन.
एक गुरु से शिक्षा ली.
दे टुक द टीचिंग्स फ्रॉम द वन गुरु.
जो गुरु सदगुरु कहा जाता है.
द गुरु हु इज कॉल्ड द सदगुरु.
और उसकी भेंट में जो दुनियावी गुरु हुए वो आज तक भी पढ़ाई पढ़ाते चले आ रहे हैं.
एंड इन कंपैरिजन टू हिम द वर्ल्डली गुरुज आर गिविंग टीचिंग्स इवन टुडे.
बड़ी बड़ी सभाओं में पढ़ाइयां पढ़ाते हैं.
दे गिव टीचिंग्स इन बिग गैदरिंग्स.
और बाप आकर एक एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं.
वेल द फादर वर्क्स हार्ड विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड सेपरेटली आफ्टर कमिंग.
वो बाप सुप्रीम सोल बाप भी बनता है.
दैट फादर द सुप्रीम सोल ऑल्सो बिकम्स द फादर.
क्योंकि आत्माओं को परिचय देता है.
बिकॉज ही गिव्स द इंट्रोडक्शन टू द सोल्स.
कि तुम मनुष्य आत्मा हो और मैं तुम्हारा सबका बाप हूँ.
यू आर अ ह्यूमन सोल एंड आई एम द फादर ऑफ यू ऑल.
वो बाप में मनुष्यों का बाप भी साबित हो जाता है और आत्माओं का बाप भी साबित हो जाता है.
दैट फादर प्रूव्स टू बी द फादर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फादर ऑफ द सोल्स.
आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता.
द फादर ऑफ द सोल्स डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं वो सब पार्टधारी हैं और उनको ज्ञान देने वाला बाप ज्योति बिंदु शिव वो तुरिया पार्टधारी है.
इट इज बिकॉज All the point souls are actors and the father, the point of light Shiv, who gives them the knowledge is a unique actor.
वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो इस दुनिया से छुड़ाने वाली कोई आत्मा इस सृष्टि पर नहीं.
If he too starts coming in the cycle of birth and death, then there isn't a single soul to liberate us from this world.
सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं.
All are entangled in the cycle of birth and death.
सब नीचे लुढ़कते जाते हैं.
All slide down gradually.
आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज होती जाती है.
The battery of everyone's soul discharges gradually.
ये आत्मा रूपी बीज कलयुग के अंत में आते आते जब बहुत कमजोर हो जाता है.
When this seed-like soul becomes very weak by the end of the Iron Age,
तो उन आत्मा रूपी बीजों को पावर भरने के लिए
to fill those seed-like souls with power,
या आत्मा रूपी बैटरीज में पावर भरने के लिए
or to fill those battery-like souls with power,
वो सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है राम और जो हीरोइन पार्टधारी है मृदुल आत्मा कृष्ण इन दो आत्माओं का विशेष आधार लेता है.
दैट सुप्रीम सोल फादर शिव कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड टेक्स द स्पेशल सपोर्ट ऑफ टू सोल्स राम हु इज द हीरो एक्टर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द जेंटल सोल ऑफ कृष्ण हु इज द हीरोइन एक्टर.
उनमें भी
इवन बिटवीन देम
एक राम के द्वारा आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर पार्ट बजाता है.
ही प्लेस द परमानेंट रोल थ्रू द वन राम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड.
वाक्य रूप में पार्ट बजाता है। राम के व्यक्तित्व अंतिम जन्म के द्वारा
He plays the role in the form of the father through the personality of Ram in his last birth.
Supreme teacher का पार्ट बजाता है।
He plays the role of the supreme teacher.
Supreme teacher का मतलब ही है जो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है।
The very meaning of supreme teacher is the one who gives teaching to the entire world.
लेकिन उस दुनिया में कोई उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता।
But no one in this world can teach him.
और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला है।
And he is the one who gives the highest teaching.
जिंदगी का कैरियर इतना ऊंचा कोई नहीं बना सकता।
No one else can make the career of our life that high.
जैसे आज के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर बना देंगे।
Just like there are teachers today, the lecturers and the professors, they will make us into a great doctor.
हजार, दस हजार, पंद्रह हजार, पचास हजार पर मंथ कमावेंगे।
By that, we will earn 1,000, 10,000, 15,000, 50,000 per month.
लेकिन एक जन्म के लिए।
But it will be for just one birth.
और वो सुप्रीम टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि रामकृष्ण की दुनिया में तो देवी देवता बनकर के जन्म लेते ही रहते हैं।
And that supreme teacher gives such teaching that we do have births as deities in the world of Ram and Krishna.
21 जन्म के लिए भाव स्वभाव संस्कार सिर्फ सुख भोगने का ही बनता है।
For 21 births, the nature and संस्कार्स are those of experiencing only happiness.
लेकिन उन्हें 21 जन्मों के आधार पर
And based on those 21 births,
63 जन्मों का भी हिसाब किताब द्वापर कलयुग का भी बन जाता है।
The karmic account of the 63 births in the copper and iron ages are also created.
जो जितना ऊंचा देवता बनता है सतयुग त्रेता में
Whoever becomes a great deity to whatever extent in the golden and silver ages,
जितना ऊंचा पुरुषार्थी बनता है संगम युग में
Whoever becomes a great Purusharthi in the confluence age to whatever extent, Purusharthi, meaning the one who makes spiritual effort,
वो उतना ही ऊंचा पाठधारी द्वापर कलयुग में भी बन जाता है।
He becomes a great actor to that extent in the copper and iron ages as well.
उसमें पुरुषार्थ के संस्कार भर जाते हैं।
He is filled with the संस्कार्स of making पुरुषार्थ meaning spiritual effort.
यहाँ के तीव्र संस्कार द्वापर कलयुग में भी काम करते रहते हैं।
The intense संस्कार्स of making पुरुषार्थ here have an effect in the copper and iron ages as well.
जैसे बाबर का मिसाल है।
Just as there is the example of Babur, the founder of the Mughal dynasty.
वो अपने जीवन का पुरुषार्थ ऐसा करता है जो सिपाही से सम्राट बन जाता है।
He makes such purusharth in his life that he becomes an emperor from a soldier in the same birth.
एक ही जन्म में इतना तीखा पुरुषार्थ करने के संस्कार है।
He has the संस्कार्स of making such intense purusharth in the same birth.
तो ये संस्कार कहाँ से भरे?
So from where did he fill himself with these संस्कार्स?
ये भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं।
It is through the teachings which God the Father teaches after coming.
जो भारत का सहज राजयोग सारी दुनिया में प्रसिद्ध है।
The easy Rajyoga of Bharat, India. Which is famous in the entire world.
देश विदेश के लोग आज भी भारत में चक्कर काटते हैं।
People from the country and abroad make a round trip to Bharat even today.
उनका अभी तक भी विश्वास है।
They have been believing this till today.
कि भारत is spiritualism. आध्यात्मिकता में बहुत आगे है.
That Bharat is much ahead in spiritualism, that is spirituality.
और हम भौतिकवादी बन गए हैं.
And that they have become materialistic.
भौतिक सुखों से हमको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला.
The real happiness that they should have received, they didn't receive it from the materialistic luxuries.
उनको ये पता नहीं है कि आज के जो गुरु गोसाई सन्यासी हैं भारत में, वो उस आध्यात्मिकता को सिखाने वाले नहीं हैं.
They don't know that the gurus, holy men and the sannyasis in Bharat at present don't teach that spirituality.
आध्यात्मिकता की ज्योति जगाने के लिए,
in order to kindle the light of spirituality,
स्वयं भगवान सदगुरु बनकर के यूनिवर्सिटी खोल रहा है.
God himself becomes the Sadguru and he is opening the university.
और ये यूनिवर्सिटी जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है,
एंड दिस यूनिवर्सिटी विच इज कॉल्ड विश्वविद्यालय,
सारे विश्व के लिए है.
इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड.
वो मनुष्यों के द्वारा चलाए हुए विश्वविद्यालय सारे विश्व का कल्याण नहीं करते हैं.
दोज यूनिवर्सिटीज रन बाय ह्यूमन बींग्स डोंट ब्रिंग द वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड.
और ये ऐसा विद्यालय है,
एंड दिस इज सच ए स्कूल,
ईश्वरीय विश्वविद्यालय,
द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉड,
जो सारे विश्व की मनुष्य मात्र आत्माओं का कल्याण करने वाला है,
विच विल ब्रिंग वेलफेयर टू एवरी ह्यूमन सोल इन द एंटायर वर्ल्ड.
और मनुष्यों का जब कल्याण होता है,
एंड वेन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज ब्रॉट अबाउट,
क्योंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है,
बिकॉज ह्यूमन बींग इज एन इंटेलेक्चुअल क्रीचर,
तो जो दूसरे जीव जंतु हैं,
देन द अदर क्रीचर्स एंड एनिमल्स
मनुष्य के वातावरण के अंदर रहते हैं, वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, वो स्वतः ही सुधर जाते हैं.
विच स्टे इन द ह्यूमन एनवायरमेंट एंड वाइब्रेशंस रिफॉर्म ऑटोमेटिकली.
जैसे मनुष्य नंबरवार सुधरते हैं, सबका सुधार एक जैसा नहीं होता.
जस्ट एज द ह्यूमन बींग्स रिफॉर्म नंबर वाइज, मीनिंग मोर और लेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ऑल डू नॉट रिफॉर्म इक्वली.
स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने वाले सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते.
द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट इक्वल ईदर.
कोई तीखी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डल हेडेड होते हैं.
सम आर शार्प इन द स्टडीज, सम आर डल हेडेड, मीनिंग हैव अ डल इंटेलेक्ट.
ऐसे ही
इन द सेम वे
ओ जीव जंतु,
द क्रीचर्स एंड एनिमल्स,
जो उन मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आते हैं,
हु कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद द ह्यूमन बींग्स,
जो मनुष्य ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं,
हु स्टडी गॉड्स टीचिंग्स,
ईश्वरीय सिखाए हुए राजयोग के आधार पर अपनी दृष्टि वृत्ति को सुधारते हैं, पवित्र दृष्टि बनाते हैं,
हु रिफॉर्म देयर विजन एंड वाइब्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ राजयोगा टॉट बाय गॉड, मेक देयर विजन प्योर.
जो गायन है देवताओं के लिए कमल नयन,
देयर इज अ प्रेज फॉर द डीटीज, लोटस लाइक आईज, कमल नयन,
कमल मुख,
लोटस लाइक माउथ, कमल मुख.
ऐसे वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं जब संगठित रूप से संसार में काम करती हैं,
वेन द सोल्स हु क्रिएट सच वाइब्रेशंस वर्क इन द वर्ल्ड कलेक्टिवली,
तो उनके वाइब्रेशन सारी दुनिया को अभिभूत कर देते हैं.
देयर वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस द एंटायर वर्ल्ड.
जो भी आत्माएं हैं,
ऑल द सोल्स,
मनुष्य मात्र हो, कीट पशु पक्षी पतंगे हो, जानवर आदि हो, सब शांत होने लग पड़ते हैं।
Whether they are human beings, insects, beasts, birds, moths, animals and so on, all start to become peaceful.
शांति का वाइब्रेशन संसार में बन जाता है और ये अशांत दुनिया खलास हो जाती है।
The vibrations of peace are created in the world and this restless world is destroyed.
अभी बाप कहते हैं,
Now the father says,
ये पढ़ाई फिर किसी जन्म में प्राप्त नहीं होगी।
You won't receive this teaching again in any other birth.
एक जन्म की पढ़ाई और जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है।
The study is for one birth and you receive the kingship for many births.
मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी ये भी गारंटी नहीं कि उसकी प्रारब्ध एक जन्म में मिले भी न मिले।
There is no guarantee at all if the teachings given by human beings will give fruits for one birth or not.
बहुत से डॉक्टर बन करके रह जाते हैं, उपाधि ले लेते हैं।
Many just become doctors. They take a degree in medicine.
डॉक्टरी का धंधा सफल नहीं कर पाते।
But they don't succeed in the doctor's profession.
बहुत से वकील बन जाते हैं।
Many become lawyers.
LLB कर लेते हैं।
They complete the LLB, meaning Bachelor of Laws.
चार आने भी जिंदगी में कोर्ट में नहीं कमा पाते।
But they aren't able to earn even चार आना in the court in their life. चार आना, meaning 25 पैसे, fraction of a rupee, now worth nothing.
खेती करते हुए देखे जाते हैं।
They are seen to be working in farms.
और ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है।
And this study of God is such.
जो 21 जन्मों के लिए तो गारंटी देती है।
That it does give the guarantee for 21 births.
किस जन्मों तक इसकी प्रारब्ध निरंतर चलेगी।
That its fruit will last continuously for 21 births.
अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई पढ़े।
प्रोवाइडेड द स्टूडेंट्स स्टडी द नॉलेज रेगुलरली एंड पंक्चुअली।
रेगुलर का मतलब रोज पढ़ाई पढ़े।
रेगुलर मीन्स दैट दे शुड स्टडी एवरी डे।
और पंक्चुअल का मतलब है टाइम से आए क्लास में।
एंड पंक्चुअल मीन्स दैट दे शुड कम टू द क्लास ऑन टाइम।
और पूरा टाइम जो एक घंटे क्लास का है या दो घंटे है वो अलर्ट होकर के पढ़ाई पढ़े।
एंड फॉर द फुल टाइम ऑफ द क्लास वेदर इट इज 1 आवर और 2 आवर्स दे शुड रिमेन अलर्ट एंड स्टडी।
लेकिन बुद्धि में वो पहचान नहीं होती।
बट देयर इजंट द रिकॉग्निशन इन द इंटेलेक्ट।
नंबरवार पहचान होती है।
और दे हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिकॉग्निशन
कि वो सुप्रीम सोल शिव जो हम आत्माओं की तरह ही ज्योति बिंदु है।
दैट द सुप्रीम सोल शिव हु इज अ पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट लाइक अस सोल्स।
वो ज्योति बिंदु शिव किस मनुष्य शरीर के द्वारा मुकर्रर कार्य कर रहा है, क्या पढ़ाई पढ़ाए रहा है।
Through which human body that point of light shiv is performing his task in a permanent way, what he is teaching.
ये भी एक बड़ी भारी परीक्षा है।
This too is a very big examination.
मनुष्य बौद्धिक प्राणी तो है।
Human being is certainly an intellectual creature.
लेकिन भांति भांति की बुद्धि वाले हैं।
But they have various types of intellect.
हर आत्मा में अपने प्रकार की बुद्धि समाई हुई होती है।
Each soul is endowed with an intellect of its own kind.
जीव जंतु पेड़ पौधे उनमें जड़त्वमयी बुद्धि है।
एनिमल्स एंड क्रीचर्स ट्रीज एंड प्लांट्स हैव एन इनर्ट इंटेलेक्ट।
और मनुष्य में चैतन्यता से भरी पूरी बुद्धि है।
while a human being has an intellect full of consciousness.
मनुष्यों में भी
even among the human beings
जो कलयुग के अंत में सिर्फ एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं
the souls who have just one birth at the end of the iron age
जिनकी संख्या 150-200 करोड़ से भी ज्यादा है
who are more than even 1.5 to 2 billion
वो बुद्धि तो होती है
they do have an intellect
लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं होती कि उनको मनुष्य कहा जा सके
but they don't have an intellect to be called human beings
मनु की औलाद कहा जा सके
so that they can be called the progeny of manu
मनु माना मन का उपयोग करने वाला
manu means the one who makes use of his mind
जो मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता
the one who doesn't make use of his mind and intellect at all
मनुष्य होते हुए भी उपयोग नहीं करता
who doesn't make use of them even after being a human being
जैसे जानवर होता है
for example there is an animal
कोई भी आवेग आवेगा
when it has a surge of excitement
तो बिना सोचे समझे बुद्धि चलाए मनन चिंतन मंथन किए अपना कार्य कर बैठेगा
इट विल डू इट्स वर्क विदाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट यूजिंग द इंटेलेक्ट विदाउट थिंकिंग एंड चर्निंग अबाउट इट
काम के आवेग से भरा पूरा कार्य हो
वेदर इट इज अ टास्क फुल ऑफ द सर्ज ऑफ लस्ट
क्रोध के आवेग से भरा पूरा कार्य हो
वेदर इट इज द टास्क फुल ऑफ द सर्ज ऑफ एंगर
लोभ के आवेग से भरा पूरा कार्य हो वो बुद्धि और मन का उपयोग किए बगैर कर बैठेगा
वेदर इट इज द टास्क फुल ऑफ द सर्ज ऑफ ग्रीड इट विल परफॉर्म इट विदाउट मेकिंग यूज ऑफ द इंटेलेक्ट एंड माइंड
बाद में भले कोई भी रिजल्ट आए भले मौत भी हो जाए वो मन बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा
इट डजंट मैटर वॉट एवर मे बी द रिजल्ट लेटर नो मैटर इफ इट डाइज इट वॉन्ट मेक यूज ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट बिफोर परफॉर्मिंग द एक्ट
तो जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहा
सो देर इज नो डिफरेंस लेफ्ट बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बींग
इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि 500 करोड़ तो मनुष्यों की सृष्टि है
दिस इज वाई गॉड द फादर सेज दैट 5 बिलियन सोल्स बिलोंग टू द ह्यूमन क्रिएशन
वैसे तो 600, 700, 750 करोड़ मनुष्य भी हैं।
अदरवाइज देर आर ऑल्सो 6, 7 और इवन 7.5 बिलियन ह्यूमन बींग्स इन टोटल
लेकिन वो एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं इस सत्य रूपी रंगमंच पर
बट दे मीनिंग 1, 2 और 2.5 बिलियन आर द सोल्स हु हैव जस्ट वन बर्थ ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड
मन बुद्धि का उपयोग करने वाली आत्माएं नहीं है
दे आर नॉट द सोल्स हु यूज देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट
तो जो 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है वो मनुष्य सृष्टि को ये कहेंगे वो सारी मनुष्य सृष्टि एक दिन मनु की औलाद बन जाती है
सो इट विल बी सेड फॉर द ह्यूमन क्रिएशन ऑफ 5 बिलियन सोल्स दैट द एंटायर ह्यूमन क्रिएशन बिकम्स द प्रोजेनी ऑफ मनु वन डे
मन बुद्धि का उपयोग करती है और सुप्रीम सोल परमात्मा बाप को पहचान लेती है
इट मेक्स यूज ऑफ इट्स माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेस द सुप्रीम सोल फादर
पहचान कर
आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम
उसकी जो निर्धारित पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई उसको पढ़ती है
दे स्टडी द टीचिंग्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम द टीचिंग्स ऑफ गॉड
जीवन में धारण करती है
असिमिलेट इट इन देयर लाइफ
और जैसी जैसी धारणाएं होती हैं वैसी वैसी प्राप्ति होती है
and they make attainments according to the level of their assimilation.
Abhi, ईश्वरीय पढ़ाई का दो तिहाई हिस्से से ज्यादा समय पूरा हो गया.
Now, more than 3/4 of the duration of the teachings of God has been completed.
जैसे और धर्म पिताएं आते हैं.
Just like the other religious fathers come.
धर्म की स्थापना करते हैं.
They establish their religions.
चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो.
Whether it is Islam, the Christian religion, the Buddhist religion, the Sikh religion,
वो 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना करके काम पूरा कर देते हैं.
They establish their religions in just 100 years and complete their work.
ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप शिव.
सिमिलरली दैट सुप्रीम सोल फादर शिव
इस सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके वापस चला जाता है.
कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिशेस द सत्य सनातन धर्म मीनिंग द ट्रू एंशिएंट डीटी रिलीजन इन 100 years एंड गोज बैक.
वो बार बार इस सृष्टि पर नहीं आता जैसे मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दिया है. संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ.
He doesn't come to this world again and again according to what the human gurus have written in the scriptures. Sambhavami yuge yuge, meaning I come in every age.
अरे हर युग में आने की दरकार क्या है?
अरे where is the necessity for him to come in every age?
लौकिक बाप भी होता है.
Even in the case of a लौकिक, meaning worldly father,
अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है. तभी बनाता है जब पुराना मकान पूरा हो जाए.
He builds a house for his children only when the old house is completely used.
पुरानापन आ जाए.
When it attains a worn out state.
दुखदायी हो जाए मकान.
When the house becomes troublesome.
तब नया मकान बनाता है.
Only then does he build a new house.
ऐसे नहीं कि नए मकान को तोड़ देगा.
It isn't that he will demolish a new house.
दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है.
Everything in the world passes through 4 stages.
मनुष्य भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं.
Human beings also pass through 4 stages.
जैसे मनुष्य का बचपन सतो प्रधान.
For example, the childhood of a human being is सतो प्रधान, consisting in the quality of goodness and purity.
किशोरावस्था सतो सामान्य.
The adolescence is सतो सामान्य, where there is ordinary goodness and purity.
जवानी रजो प्रधान.
The adulthood is रजो प्रधान, dominated by the quality of activity or passion.
और बुढ़ापा तमो प्रधान हो जाता है.
And the old age is तमो प्रधान, dominated by darkness or ignorance.
ऐसे ये सृष्टि भी.
सिमिलरली दिस क्रिएशन टू.
ये मनुष्य सृष्टि चार अवस्थाओं से गुजरती है.
दिस ह्यूमन क्रिएशन पासेस थ्रू 4 stages.
उन चार अवस्थाओं को इस सृष्टि रूपी ड्रामा का 4 सीन कहा जा सकता है.
दोज 4 stages कैन बी कॉल्ड द 4 सीन्स ऑफ दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा.
सतो प्रधान सत्ययुग.
द गोल्डन एज इज सतो प्रधान.
सतो सामान्य त्रेता युग.
द सिल्वर एज इज सतो सामान्य.
रजो प्रधान कलयुग और तमो. रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग.
द कॉपर एज इज रजो प्रधान एंड द आयरन एज इज तमो प्रधान.
तमो प्रधानता जब बढ़ती है तो एवरेज एज कम होती जाती है.
When the state of being tamo pradhan increases, the average age of the human being decreases gradually.
आत्मा की शक्ति छीन होने के कारण उम्र भी घटती है.
Because of reduction of the power of the soul, the life span decreases.
और इंद्रियों से सुख भोगने की शक्ति भी छीन होती जाती है.
As well as the power to experience happiness through the इंद्रिया reduces day by day. इंद्रिया parts of the body used to perform actions and sense organs.
भगवान बाप सुप्रीम सोल आते हैं.
When God the Father Supreme Soul comes,
तो राजयोग के द्वारा आत्मा में शक्ति भरते हैं.
He fills the soul with power through Rajyoga.
वो शक्ति भरने की प्रक्रिया है सहज राजयोग.
That process of filling the soul with power is easy Rajyoga.
शक्ति छीन कैसे हुई सो भी बताते हैं.
He also explains how the power reduced.
सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति छीन हो गई.
The power of the soul reduced while experiencing happiness continuously.
सतयुग त्रेता में भी सुख भोगे और द्वापर कलयुग में भी सुख भोगे.
We experienced happiness in the golden and silver ages as well as in the copper and iron ages.
सतयुग त्रेता में जो सुख भोगे वो अभिविचारी सुख भोगे.
The happiness that we experienced in the golden and silver ages was unadulterated happiness.
राधा की दृष्टि कष्ट में ही डूबती थी.
Radha used to exchange gazes only with Krishna.
कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी.
Krishna used to exchange gazes only with Radha.
दृष्टि मात्र भी विचार नहीं होता था.
There was no adultery even to the level of vision.
ऐसी सतयुग त्रेता की देवताई सृष्टि थी.
Such was the divine world in the golden and silver ages.
बाकी सुख वहाँ भी भोगते हैं.
And happiness is experienced there too.
इंद्रियों के द्वारा ही सुख भोगते हैं.
Happiness is experienced through the इंद्रिया itself.
लेकिन आत्मा की शक्ति धीमी गति से छीण होती है.
But the soul's power reduces at a slow pace.
और द्वापर कलयुग में द्वैतवादी युग होने के कारण.
And in the copper and iron ages, due to being dualistic ages.
अनेक मनुष्य गुरुओं का प्रभाव होने के कारण.
Due to the influence of many human gurus.
अनेक धर्म पिताओं के प्रभाव के कारण.
Due to the influence of many religious fathers.
अनेक धर्म और अनेक राज्य फैल जाने के कारण विचार फैल जाता है.
Due to the expansion of many religions and many states, adultery spreads.
जिसे कहते हैं कुत्तपना.
It is called कुत्तपना, meaning the संस्कार्स of adultery like in a dog.
बंदरपना.
बंदरपना, meaning a vicious nature like that of a monkey.
ऐसा जो विचार फैलता है उसके कारण आत्मा की शक्ति बड़ी तीव्र गति से डाउन होती चली जाती है.
बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ सच अडल्ट्री द पावर ऑफ द सोल गोस डाउन वेरी रैपिडली.
तो बाप बताते हैं ये रहस्य.
सो द फादर एक्सप्लेन्स दिस सीक्रेट.
कि अनेकों के संग के रंग से तुम पतित और विकारी बन गए.
यू हैव बिकम सिनफुल एंड विशियस ड्यू टू बीइंग कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ मेनी.
अब एक सुप्रीम सोल बाप के संग के रंग से.
नाउ विद द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द वन सुप्रीम सोल फादर.
तुम अपनी आत्मा को आत्मा रूपी बैटरी को आत्मा रूपी बीज को फिर से सोला कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम शेष आत्मा बना सकते हो.
यू कैन मेक योर सोल द बैटरी लाइक सोल द सीड लाइक सोल एंड एलिवेटेड सोल कम्प्लीट विथ 16 सिलेस्टियल डिग्रीज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट द हाइएस्ट अमंग द सोल्स इन फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट अगेन.
अनेकों के संग के रंग में आकर के द्वैतवादी युग से नीचे गिरते गए.
यू केम इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ मेनी एंड कंटिन्यूड टू फॉल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ड्यूअलिस्टिक एज.
अभी मैं फिर से आया हूँ अद्वैत धर्म स्थापन करने के लिए.
नाउ I have come again to establish a non-dualistic religion.
वहाँ सत्युग त्रेता में एक ही धर्म होगा, दूसरा धर्म नहीं होगा.
There will be only one religion there in the golden and silver ages. There won't be any other religion.
इसलिए धारणाएं श्रेष्ठ होंगी.
For this reason, the dharana, meaning beliefs and practices, will be elevated.
श्रेष्ठ धारणा वालों को ही देवता कहा जाता है.
Those with elevated dharana themselves are called deities.
भ्रष्ट धारणा वालों को मनुष्य और राक्षस कहा जाता है.
Those with corrupt dharana are called human beings and demons.
कलयुग में सब राक्षस संप्रदाय बन जाते हैं.
In the Iron Age, all become the ones belonging to the community of demons.
कोई छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हम मन वचन कर्म से तन मन धन से कोई को कभी दुख नहीं देते.
No one can say openly, we never give sorrow to anyone through our mind, speech, actions, body, mind and wealth. छाती ठोक कर कहना, literally to beat one's own chest and say something, meaning to say openly or declare something.
दुख देने वाले को ही राक्षस कहा जाता है.
The one who gives sorrow himself is called a demon.
सुख देने वाले को देवता कहा जाता है.
The one who gives happiness is called a deity.
और देवताओं को भी बनाने वाला सुख का सागर बाप है.
And the one who creates those deities themselves is the ocean of happiness, the father.
जो आकर के मनुष्य से देवता बनाता है.
Who comes and makes human beings into deities.
जो राक्षसी स्वभाव के हैं, वो संपूर्ण देवता नहीं बन सकते.
Those with devilish nature can't become complete deities.
जन्म जन्मांतर का उनका राक्षसी स्वभाव रहा है.
They have been the ones with a devilish nature for many births.
विचार फैलाने का स्वभाव संस्कार रहा है.
They have been the ones with the nature and संस्कार्स of spreading adultery.
जैसे गुरुओं ने पुस्तकों में लिख दिया.
Just like the gurus have written in books.
कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ला बनता है, बंदर बनता है.
That the human being is born in 84 lakh species. He becomes a dog, a cat. He becomes a monkey.
उन गुरुओं से प्रभावित होकर के वैज्ञानिकों ने भी कभी लिख दिया था कि मनुष्य आदि में बंदर था.
The scientists also became influenced by those gurus and wrote at one time, earlier the human being was a monkey.
धीरे धीरे बंदर की पूंछ खलास हो गई और वो बंदर से मनुष्य बन गया.
Gradually, the monkey's tail vanished and it became a human being from a monkey.
आज के वैज्ञानिकों ने वो डार्विन थ्योरी झूठी साबित कर दी.
The scientists today have proved this Darwin's theory to be false.
वास्तव में मनुष्य आत्मा की बीज की जो जाति है वो अलग जाति है.
In reality, the species of the seed of the human soul is a different species.
भांति भांति की जाति के बीज होते हैं.
There are different species of seeds.
जैसी जाति का बीज होता है वैसा ही वृक्ष तैयार होता है.
As is the species of the seed, so is the category of the tree that grows from it.
मनुष्य जाति का बीज होगा तो मनुष्य ही पैदा होंगे.
If it is the seed of the species of a human being, only human beings will be born from that seed.
जानवर की जाति का बीज होगा माने चैतन्य बीज, आत्मा रूपी बीज, तो जानवर ही पैदा होगा.
If it is the seed of the species of an animal, meaning a living seed, seed-like soul, an animal itself will be born from it.
कैटेगरी जानवरों की अलग हो सकती है.
The category of animals can be different.
जैसे चौपाए जानवर, चार पांव वाले, चार पांव से चलने वाले.
For example, the चौपाए animals, meaning those with four legs, those which walk on four legs.
उनकी जाति विचार के संक्रमण से बदल सकती है.
Their species can change because of the spread of adultery.
जैसे घोड़ा खच्चर बन जाता है ऐसे.
Just like a horse turns into a mule.
मनुष्य भी एक जाति है.
Human being is also a species.
मनुष्य से बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है.
When a human being is spoiled, he becomes a demon.
और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बन जाता है.
And when a human being reforms, he becomes a deity.
देवयोनि में भी कोई पक्के देवता बनते हैं और कोई कच्चे देवता बनते हैं.
Even among beings of divine birth, some become firm deities and some become weak deities.
जो पक्के देवता बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं.
Those who become firm deities have the complete 84 births.
पक्के सनातन धर्मी.
They are the ones belonging firmly to the ancient deity religion, सनातन धर्मी.
सनातन का मतलब ही है पुराने. पूरे 84 जन्म लेने वाले.
The very meaning of Sanatan is ancient. Those who have the complete 84 births.
और जो कच्चे देवताएं बनते हैं.
And those who become weak deities.
उसका भी कारण है कि वो कच्चे देवताएं क्यों बनते हैं.
There is a reason behind their becoming weak deities as well.
वो कच्चे देवताएं कम जन्म क्यों लेते हैं.
Why do those weak deities have fewer births?
इसलिए लेते हैं कि भगवान बाप आकर के जब पढ़ाई पढ़ाते हैं.
They have fewer births because when God the Father comes and teaches the knowledge.
तो पढ़ाई तो पढ़ते हैं लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते.
They do study the knowledge but they don't study it completely.
Regular और punctual होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते.
They don't study regularly and punctually.
उस ईश्वरीय पढ़ाई को उतना महत्व नहीं देते.
They don't give so much importance to God's teachings.
इसलिए कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवता बनते हैं.
For this reason, they become weak deities who convert.
वो ही सतयुग त्रेता के देवताएं द्वापर युग में आकर के.
The same deities of the golden and silver ages, after coming to the copper age,
दूसरे धर्म पिताओं जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट इनके प्रभाव में आकर के भारतवासियों को धोखा देते हैं.
बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर रिलीजियस फादर्स लाइक इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट डिसीव द भारतवासीज मीनिंग द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया.
और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं.
एंड कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स.
हिस्ट्री बताती है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे.
द हिस्ट्री शोज दैट द हिंदूज देमसेल्व्स हैव बीन कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन्स.
जो हिंदू पहले देवता थे वो देवताएं ही बाद में हिंदू कहे गए.
द हिंदूज हु वर डीटीज अर्लियर दोज डीटीज देमसेल्व्स वर कॉल्ड हिंदू लेटर.
सबसे पुराना देश दुनिया में भारत वर्ष है.
द कंट्री ऑफ भारत इंडिया इज द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड.
और धर्मों की तो हिस्ट्री ही 2500 साल की है.
द हिस्ट्री ऑफ द अदर रिलीजन्स इज ऑफ जस्ट 2500 ईयर्स.
सबसे पुराना मनुष्य रूप में आया हुआ धर्म पिता इब्राहिम है.
इब्राहिम इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस फादर हु कम्स इन अ ह्यूमन फॉर्म.
वो 2500 साल पहले आया था.
ही केम 2500 ईयर्स अगो.
इस्लाम धर्म सबसे पुराना माना जाता है मानवीय धर्मों में.
Among the religions established by humans, Islam is considered to be the oldest.
लेकिन वो इस्लाम धर्म कैसे बना?
But how was Islam established?
इब्राहिम ऊपर से आया.
When the soul of Abraham came from above,
तो सारे इस्लामी ऊपर से आकर के नीचे बन गए. या पहले भी मनुष्य सृष्टि थी.
Were all the people of Islam created just by coming down from above or did the human creation exist earlier too?
पहले भी भारत में मनुष्य सृष्टि थी.
The human creation existed in Bharat earlier too.
जो देवताएं थी.
They were deities.
उन देव आत्माओं में ही ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं।
द सोल्स ऑफ अदर रिलीजन्स कमिंग फ्रॉम अबाउ एंटर द सेम डीटी सोल्स
और प्रवेश करके भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेती है।
एंड आफ्टर एंटरिंग देम दे कन्वर्ट द हिंदूस ऑफ भारत।
जो कच्चे देवताएं होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं।
द वीक डीटीज कन्वर्ट
पर धर्म में चले जाते हैं।
दे गो टू अदर्स रिलीजन।
गीता में भी कहा है स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह।
इट इज ऑल्सो सेड इन द गीता स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह।
अपने धर्म में मर जाना अच्छा और दूसरे का धर्म दुखदायी होता है।
मीनिंग इट इज बेटर टू डाई इन वंस ओन रिलीजन अदर्स रिलीजन गिव्स सोरो।
दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स देवता धर्म के अथवा हिंदू धर्म की आत्माओं को कन्वर्ट करके अपना दास दासी बना करके रखते हैं।
द रिलीजियस फादर्स ऑफ द अदर रिलीजन्स एंड देयर फॉलोअर्स कन्वर्ट द सोल्स ऑफ द डीटी रिलीजन और द हिंदू रिलीजन एंड कीप देम एज देयर सर्वेंट्स एंड मेट्स।
उनको कोई राजा ही नहीं मिल जाती है।
दे डोंट रिसीव अ किंगशिप।
आज भी क्रिश्चियंस ये हिस्ट्री बना करके गए हैं इंडिया में।
इवन टुडे द क्रिश्चियंस हैव क्रिएटेड दिस हिस्ट्री इन इंडिया
के भारतवासियों को नौकर बनाना सिखा दिया।
दे टॉट द भारतवासीज टू बिकम नौकर मीनिंग सर्वेंट।
उनकी बुद्धि में ये बैठा दिया कि नौकरी करना बहुत अच्छी चीज है।
दे मेड दिस सेट इन देयर इंटेलेक्ट दैट डूइंग अ जॉब इज अ वेरी गुड थिंग।
नौकरी और चाकरी उसको कहते हैं दास दासी बनना, कोई न कोई के अंडर में रहना।
टू डू अ जॉब एंड टू सर्व इट इज सेट टू बिकम सर्वेंट्स एंड मेड्स टू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन और अदर।
वो धर्म पिताएं साथ दास दासी बनना सिखाते हैं।
All those religious fathers teach to become servants and maids.
और मनुष्य सृष्टि को उन्होंने दास दासी बना करके रखा।
And they kept the people of the world as their servants and maids.
भगवान बाप ही एक ऐसी आत्मा है सुप्रीम सोल जो आकर के बताते हैं।
God the Father alone, the supreme soul is such a soul who comes and says
कि बच्चे मैं तुमको राजा बनाने आता हूँ, राजयोग सिखाने आता हूँ।
चिल्ड्रन आई कम टू मेक यू किंग्स, आई कम टू टीच यू राजयोगा।
तो राजा रानी पद पाना चाहिए।
सो शुड यू अटेन द स्टेटस ऑफ अ किंग एंड अ क्वीन
या दास दासी बनना चाहिए
और शुड यू बिकम सर्वेंट्स एंड मेट्स
नौकर चाकर बनना चाहिए।
शुड यू बिकम नौकर चाकर मीनिंग सर्वेंट्स।
ये नौकर चाकर के संस्कार दूसरे धर्म के धर्म पिताओं ने आकर के डाले हैं।
द रिलीजियस फादर्स ऑफ द अदर रिलीजन्स हैव फिल्ड अस विद दीज संस्कार्स ऑफ बिकमिंग नौकर चाकर आफ्टर कमिंग।
भगवान बाप तो आकर के राजा ही स्थापन करता है।
इन फैक्ट गॉड द फादर कम्स एंड एस्टेब्लिशेस किंगशिप।
और दूसरे धर्म के धर्म पिता ने सारी दुनिया को प्रजातंत्र में कन्वर्ट कर देते हैं।
एंड द रिलीजियस फादर्स ऑफ द अदर रिलीजन्स ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इनटू द डेमोक्रेटिक सिस्टम।
प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य।
देयर इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट्स ओवर द सब्जेक्ट्स।
भगवान बाप कहते हैं ये बेकायदे राज्य है।
गॉड द फादर सेज दिस इज एन अनलॉफुल रूल।
प्रजा साफ साधारण क्वालिटी की होती है।
All the subjects are of ordinary quality.
और राज परिवार में आने वाली आत्माएं सब ऊंची क्वालिटी की होती है।
While all the souls who come in the royal family are of high quality.
कैसे ऊंची क्वालिटी की होती है?
How do they become of a high quality?
क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं तो दुनिया के हर धर्म में कन्वर्ट हुई जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं उन आत्माओं का चुनाव करते हैं।
It is because when God the Father comes, He selects from every religion in the world the most elevated souls from among the souls who have converted to that religion.
और उन शेष से शेष आत्माओं को चुन करके पढ़ाई पढ़ाते हैं.
And after selecting those most elevated souls, He teaches them.
जिस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ करके उन आत्माओं में ये संस्कार पक्का होता है कि राजाई का जमाना ही श्रेष्ठ था.
After studying God's teachings, the संस्कार of having this thought that the era of kingship alone was the best becomes strong in those souls.
इस सृष्टि में और हिस्ट्री में राजाओं का राज्य बड़े लंबे समय तक चला है.
The rule of kings has lasted for a very long time in this world and in the stories mentioned in history.
अभी ये दुनिया में 200-300 वर्षों के अंदर प्रजातंत्र राज्य फैल गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य.
Now in the last 200 to 300 years the democratic rule, the rule of subjects over the subjects has spread in the world.
ये भगवान बाप आकर के नहीं बनाते.
God the Father doesn't establish the rule of the subjects over the subjects when he comes.
बाप तो आकर के सिखाते हैं, बच्चे आधीन रहना नहीं है.
In fact, the father comes and teaches, children, you shouldn't be dependent.
अधिकारी बनना है.
You must become rulers. अधिकारी meaning the one who possesses right, a ruler, someone entitled to authority power.
राजा बनना है.
You must become kings.
महाराजा बनना है.
You must become emperors.
और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए.
And not just for one birth, but for birth after birth.
हिस्ट्री में जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, कोई बताए कि इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया?
The insignificant and mighty kings who have been mentioned in history, someone tell us who taught these kings to rule?
कब सिखाया?
When did he teach them?
डॉक्टरों को डॉक्टरी सिखाई जाती है, वकीलों को वकालत सिखाई जाती है, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग सिखाई जाती है.
Doctors are taught to practice medicine, lawyers are taught to be advocate, engineers are taught to practice engineering.
इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया?
Who taught these kings to rule?
कब सिखाया?
When did he teach them?
वो भगवान ने सिखाया.
God taught this to them.
भगवान आकर के राजा बेटा बनाता है.
God comes and makes us royal children, राजा बेटा.
ये जन्म जन्मांतर के संस्कार,
these संस्कार for many births,
राजा और रानी बनने के संस्कार,
the संस्कार्स to become a king and a queen,
राज परिवार में जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनने के संस्कार,
the संस्कार्स to become prince and princess in the royal family for many births,
अभी भगवान बाप आकर के आत्माओं में भर रहे हैं.
God the Father has now come and is filling us with it now.
हिस्ट्री की बात है, कहते हैं आधा में जाम और आधा में रैयत.
This is the fact in history. It is said आधा में जाम और आधा में रैयत. It means all the subjects are sustained on half the wealth and the king and the royal family are sustained on half the wealth.
जाम माने राजा.
जाम means king.
आधी धन संपत्ति में राजाएं पलते हैं और उनका परिवार पलता है.
The kings and their families are sustained by half the wealth and property.
राज्य की जो भी धन संपत्ति होती है उसमें से आधे के ऊपर वो काबिज रह करके अधिकार में रहते हैं और सुख भोगते हैं.
They possess half the wealth and property of the kingdom. They have authority over it and experience happiness.
प्रजा खुशी खुशी उनको वो धन अर्पण करती है.
The subjects offer them that wealth happily.
और आधे में सारी प्रजा पलती है.
And all the subjects are sustained from the other half of the kingdom's wealth.
हिस्ट्री में ये बात देखने को मिली है.
This has been observed in history.
प्रजा वर्ग वाले प्रजा में क्यों जाते हैं?
Why do those from the class of subjects become subjects?
क्योंकि वो पढ़ाई नहीं पढ़ते.
It is because they don't study the knowledge.
और राजवर्ग वाले राजा क्यों बनते हैं?
And why do those from the class of kings become kings?
राजघराने में जन्म जन्मांतर क्यों जन्म लेते हैं?
Why are they born in the royal family birth after birth?
क्योंकि उन्होंने भगवान बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई को पढ़ा.
It is because they studied the knowledge taught by God the Father.
भगवान बाप को पहचाना.
They recognized God the Father.
भक्त लोग तो ऐसे ही बिना जाने बिना पहचाने मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा करते रहते हैं.
The devotees simply go to temples and worship God without realizing, without recognizing Him.
कोई राम के रूप में भगवान को मानते हैं, कोई कृष्ण के रूप में भगवान को मानते हैं, अंधश्रद्धा पूर्वक.
Some believe God to be in the form of Ram and some believe God to be in the form of Krishna out of blind faith.
ज्ञान की दृष्टि से पहचान करके नहीं.
Not after recognizing Him through the eye of knowledge.
बाप ये अंधश्रद्धा का खंडन कर देते हैं.
The father refutes this blind faith.
भक्ति है अंधश्रद्धा.
भक्ति इज ब्लाइंड फेथ.
और ज्ञान है श्रद्धा विश्वास को पक्का करने वाला.
एंड नॉलेज मेक्स फेथ एंड बिलीफ फर्म.
श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है.
फेथ एंड बिलीफ इज समथिंग गुड.
लेकिन श्रद्धा विश्वास अगर उसमें अंधश्रद्धा मिल गया.
बट इफ द वर्ड ब्लाइंड इज एडेड टू फेथ एंड बिलीफ.
अज्ञानता आ गई.
इफ देयर इज इग्नोरेंस.
ऐसे ही कोई के ऊपर श्रद्धा धारण कर ली विश्वास पैदा कर लिया तो वो भक्ति हो जाती है.
इफ वी हैव फेथ हैव ट्रस्ट ऑन समवन थॉटलेसली इट इज भक्ति.
अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को खंडन करना ये ज्ञानियों का काम है.
टू रिफ्यूट ब्लाइंड फेथ एंड ब्लाइंड बिलीफ इज द टास्क ऑफ द नॉलेजेबल वंस.
भगवान बाप आकर के ऐसे ज्ञानी बच्चे तैयार कर रहे हैं.
गॉड द फादर हैज कम एंड ही इज प्रिपेयरिंग सच नॉलेजेबल चिल्ड्रन.
वो ज्ञानी बच्चे एक एक बात एक एक कदम जो बढ़ाते हैं उसमें देखते हैं.
दोज नॉलेजेबल चिल्ड्रन चेक इन एवरी मैटर एंड इन ईच स्टेप दैट दे टेक अहेड.
कि ये काम कारण कार्य के विश्लेषण पूर्वक है या नहीं है.
वेदर द एक्शन इज रीजनेबल विद रिगार्ड टू इट्स कॉज एंड इफेक्ट और नॉट.
क्या करना है और क्या नहीं करना है.
वॉट हैज टू बी डन एंड वॉट मस्टन्ट बी डन.
कौन सा कार्य सत्य है और कौन सा कार्य असत्य है.
विच वर्क इज ट्रू एंड विच वर्क इज फॉल्स.
ये निर्णय करना ज्ञान के तीसरे नेत्र का काम है.
इट इज द टास्क ऑफ द थर्ड आई ऑफ नॉलेज टू डिसाइड दिस.
ये बुद्धि का नेत्र भगवान बाप आकर के खोलते हैं.
गॉड द फादर कम्स एंड ओपन्स दिस आई ऑफ द इंटेलेक्ट.
तीनों कालों का ज्ञान देते हैं.
ही गिव्स द नॉलेज ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम.
तीनों कालों का सही ज्ञान मनुष्य गुरुओं के पास नहीं हो सकता.
Human gurus can't have the correct knowledge of all the three aspects of time.
वो तीनों कालों का ज्ञान ऐसे ही के पास हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो.
Only the one who doesn't come into the cycle of birth and death can have the knowledge of the three aspects of time.
वो जन्म में और मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा सदाशिव है.
The soul who doesn't come in the cycle of birth and death is Sadashiv.
सदैव कल्याणकारी है.
He is always beneficial.
बल सृष्टि के अंत में वो इस सृष्टि पर आता है.
Although he comes to this world at the end time of the world cycle.
सिर्फ 100 साल के लिए इस सृष्टि पर आता है.
Although he comes to this world only for 100 years.
उसमें भी
Even in that duration of 100 years,
मनुष्य मात्र के सामने प्रत्यक्ष होकर बहुत थोड़े समय पार्ट बजाता है.
He plays a role for a very short time in a revealed form in front of all the human beings.
लेकिन जो भी पार्ट बजाता है
But whatever role he plays,
पार्ट तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाएगा.
A role will definitely be played through a body alone.
शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा.
It will be played through the कर्मेंद्रियां of the body themselves. कर्मेंद्रियां, parts of the body used to perform actions.
शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बजाया जाएगा.
And it will be played through the ज्ञानेंद्रियां of the body themselves. ज्ञानेंद्रियां, literally organs of knowledge, meaning sense organs.
तो जो भी ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाता है, उस पार्ट में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है.
So whatever role he plays through the ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, benefit and only benefit is contained in that role.
चाहे वो आंख जैसी श्रेष्ठ इंद्रिय क्यों न हो और चाहे वो कामांग जैसी भ्रष्ट इंद्रिय क्यों न हो.
Whether it is an elevated organ like the eye or a corrupt organ like the organ of lust.
वो मनुष्य रूप में आता है.
He comes in a human form.
साधारण मनुष्य तन में आता है.
He comes in an ordinary human body.
तो साधारण मनुष्य तन में आकर के सर्व साधारण मनुष्यों की तरह ही तो कार्य करेगा.
So after coming in an ordinary human body, he will certainly perform actions like ordinary human beings, won't he?
लेकिन जो भी कार्य करेगा उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी नहीं हो सकता.
But whatever action he performs, its result will be beneficial. It cannot be harmful.
इसलिए उसका नाम शिव है.
For this reason, his name is Shiv.
शिव नहीं, सदाशिव.
Not just Shiv, but सदाशिव.
सदैव कल्याणकारी.
Meaning always beneficial.
अकल्याण का नाम निशान नहीं.
There isn't even a trace of harm in him.
शिव नेत्र कहा जाता है.
It is said Shiv नेत्र, meaning Shiv's eye.
शिवलिंग कहा जाता है.
It is said शिवलिंग, meaning Shiv's lingam, that is oblong shape.
कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है.
It is said the world reforms through vision, दृष्टि.
ट्रकों में लिखा हुआ देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला.
You must have seen this written on trucks. Let the face of the one with bad vision be blackened.
तो बुरी नजर से बुरा असर होता है ना?
So bad vision has a bad effect, hasn't it?
कल्याणकारी शिव की दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है.
The entire world reforms through the vision of beneficial Shiv.
वो शिव नेत्र कहा जाता है.
It is called Shiv's eye.
वो ही शिव नेत्र दृष्टि से सृष्टि को सुधारने वाला भी है.
The same Shiv's eye also reforms the world through vision.
और शास्त्रों में लिखा है.
And it is written in the scriptures.
कि वही नेत्र जब खुलता है तो आसुरी सृष्टि का.
That when the same eye opens, the devilish world.
क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है.
What happens to it? It is destroyed.
आसुरी सृष्टि जो काम विकार की सृष्टि है.
The devilish world, which is the creation created by lust.
वो कामदेव को भस्म कर देता है. तीसरा नेत्र.
The third eye destroys that कामदेव, deity of lust.
शास्त्रों में तो लिख दिया है वो काम देवता कोई देवता का तो रूप धारण करके आया था.
In fact, they have written in the scriptures that the deity of lust came in the form of a deity.
अब वो कोई काम देवता काम देव नहीं होता है.
Well, the deity of lust is not a deity of lust.
वास्तव में जो राम बनता है वो ही सारी सृष्टि को आकर्षण करने वाला कृष्ण है.
एक्चुअली द वन हु बिकम्स राम हिमसेल्फ इज कृष्ण हु अट्रैक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड.
राम और कृष्ण का एक ही चोला होता है.
राम एंड कृष्ण हैव द सेम बॉडी.
जिसे ब्राह्मणों की भाषा में बाप दादा कहा जाता है.
विच इज कॉल्ड बाप दादा इन द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स.
भक्तों की भाषा में आर्धनारीश्वर रूप दे दिया है.
इन द लैंग्वेज ऑफ डिवोटीज दे हैव गिवन देम द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर मीनिंग हाफ मेल एंड हाफ फीमेल.
वो रामकृष्ण की आत्मा है. दोनों मिलकर के स्थापना पालना और विनाश तीनों ही कार्यों को संपादन करती है.
द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा टूगेदर अकम्प्लिश ऑल द थ्री टास्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन.
और वो तीनों कार्यों को संपादन करने वाली मूर्तियां शिव की मूर्तियां हैं.
एंड द पर्सनैलिटीज हु अकम्प्लिश ऑल द थ्री टास्क आर शिव पर्सनैलिटीज.
इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है.
दिस इज वाई दे आर कॉल्ड त्रिमूर्ति शिव.
ये तीन मूर्तियों को जिन्होंने पहचान लिया
दोज हु रिकग्नाइज दीज थ्री पर्सनैलिटीज.
जो मूर्तियां अभी प्रैक्टिकल में संसार में कार्य कर रही हैं, प्रैक्टिकल माना शरीर के द्वारा.
द पर्सनैलिटीज हु आर फंक्शनिंग इन दिस वर्ल्ड इन प्रैक्टिस मीन्स थ्रू द बॉडी.
उसने ही भगवान को सही तरीके से पहचाना.
दे अलोन हैव रिकग्नाइज्ड गॉड इन अ प्रॉपर मैनर.
क्योंकि भगवान भाग्यवान बनाने के लिए आया हुआ है.
इट इज बिकॉज गॉड हैज कम टू मेक अस फॉर्चुनेट.
भाग्यवान सब नहीं बनेंगे.
नॉट ऑल विल बिकम फॉर्चुनेट.
जो द्वापर युग से परम धाम से नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं उनको भाग्यशाली नहीं कहेंगे.
द सोल्स हु डिसेंडेड फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड फ्रॉम द कॉपर एज वोंट बी कॉल्ड फॉर्चुनेट.
क्यों?
वाई?
क्योंकि वो सब आत्माएं दूसरे धर्म की आत्माएं हैं.
इट इज बिकॉज ऑल दो सोल्स बिलोंग टू अदर रिलीजन्स.
वो द्वैतवादी युग में ही आती है.
दे कम ओनली इन द ड्यूअलिस्टिक एज.
दुख की सृष्टि में ही आती है.
दे कम ओनली इन द सोरोफुल वर्ल्ड.
वो दुर्भाग्यशाली है. उन आत्माओं के मुकाबले जो सतयुग त्रेता में आकर के जन्म लेती है.
दे आर अनफॉर्चुनेट इन कंपैरिजन टू द सोल्स हु आर बॉर्न इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस.
जो सतयुग त्रेता में आकर जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनमें भी दो प्रकार के हैं.
इवन द सोल्स हु आर बॉर्न इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस दे आर ऑफ टू टाइप्स.
एक वो है जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए.
वन टाइप इज दोज हु हैड द फुल 84 बर्थ्स.
एक वो है जिन्होंने कम जन्म लिए नंबर वार.
एंड द अदर्स आर दोज हु हैड फ्यूअर बर्थ्स नंबर वाइज मीनिंग वन लेसर देन द अदर.
जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके लिए बोला है.
इट हैज बीन सेड फॉर दोज हु हैड द फुल 84 बर्थ्स
कि तुम बच्चे पौना हिस्सा षष्टि का सुख भोगते हो.
यू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर 3/4 ऑफ योर लाइफ इन द वर्ल्ड.
3/4 हिस्सा सुख है तुम्हारे लिए और सिर्फ 1/4 हिस्सा इस षष्टि का दुख भोगते हो.
फॉर 3/4 ऑफ योर लाइफ देर इज हैप्पीनेस फॉर यू एंड यू एक्सपीरियंस सोरो इन दिस वर्ल्ड ओनली फॉर अ 1/4 ऑफ द टाइम.
उसमें भी तुम नंबर वार हो.
इवन इन दैट यू एक्सपीरियंस मोर और लेस सोरो अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ.
कोई तो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं.
सम एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इवन फॉर 82-83 बर्थ.
आखिरी जन्म में जाकर के दुखी होते.
दे एक्सपीरियंस सोरो ओनली इन द लास्ट बर्थ.
तो ऐसी पढ़ाई जो सुख का सागर बाप आकर के पढ़ाए रहा है.
सो सच नॉलेज विच द फादर द ओशन ऑफ हैप्पीनेस इज टीचिंग आफ्टर कमिंग.
अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे?
इफ यू वॉन्ट स्टडी इट नाउ व्हेन एल्स विल यू स्टडी इट.
ओम शांति.
ओम शांति.